शांति। ड्रामा का पार्ट सभी को पक्का है ना? हाँ, ड्रामा में विशेषकर ब्राह्मण परिवार में पल पल परिवर्तन आते रहते हैं और उसी का परिणाम ये है कि इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप पंजाब छोन से ही है, हिमाचल की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। 1995 में जिस वर्ष ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ उस वर्ष आपको बाबा मिले और फिर नशा चढ़ गया बाबा का बनने का और 4 साल के बाद ही मधुबन आकर अपना जीवन समर्पित किया। तो 1999 से आप मधुबन में रह रहे हैं, विशेष करके मीडिया सोशल विंग की सेवाएं आप संभाल रहे हैं और यहाँ आने से पहले सोनी कंपनी में आप एस एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत थे। तो 14 साल का अनुभव लेकर बाबा के प्रति निश्चय और नशा रखकर आप यहाँ पहुँचे, मधुबन में अपनी सेवाएं भी संभालते हैं और साथ साथ जो मधुबन का पुरुषार्थी ग्रुप है उसमें आप एक्टिव सदस्य हैं और दिन में 2-3 बार तो आपस में ग्रुप में बैठकर मुरली डिस्कशन करते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा भी बहुतों को बाबा का ज्ञान का खजाना भेजते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय के साथ जो आज का बाबा का वरदान था, पास विद ऑनर भव। तो पास विद ऑनर होने के लिए मुख्य क्या धारणाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए उसका मार्गदर्शन सुशील भाई देंगे। सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। संगम पर अचानक का पाठ बार बार सामने आता है सबके, तो हमें भी अभी थोड़ा आधा घंटा पहले बताया गया कि ऐसे ऐसे उषा वेंच का क्लास था, अभी वो किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो आपको कराना है। तो क्लास तो हम तो आपस में चर्चा ही करेंगे और जब ऐसा कोई मौका आता है तो परिस्थितियां चारों ओर से आती हैं, लेकिन हमने देखा अगर किसी भी बात को लेकर हां कर दी जाए तो रास्ते खुद ना खुद निकल आते हैं, क्योंकि हां कहने में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा भरी हुई है, ना कहने में नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। जैसे हम हां करते हैं किसी भी कार्य के लिए तो अपने आप समाधान के लिए मन बुद्धि अपने आप काम करना आरंभ कर देता है। अगर हम कोई बहाना देकर मना करते हैं तो मन बुद्धि डल हो जाता है फिर, और आगे के लिए वही सोचता है कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन हां करने से थोड़ा मन बुद्धि को धक्का लगता है, मन बुद्धि सोचने के लिए थोड़ा बेवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, और उसमें ना केवल अपना ही कल्याण होता है, अपनी स्थिति शक्तिशाली बनती है, बल्कि जो भी हमारे अंग संग संबंध संपर्क में आने वाले होते हैं उनके साथ भी हम बहुत अच्छे से डीलिंग कर सकते हैं, व्यवहारिकता में बदलाव आता है, दूसरे भी कुछ हमारे जीवन से सीख सकते हैं। तो आज का जो विषय है, पास विद ऑनर कैसे बने, बहुत हाई सब्जेक्ट है और लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट वो एम एन ऑब्जेक्ट बहुत हाई रखना चाहिए, लो एम एन ऑब्जेक्ट रखना ये भी अपराध है। इसलिए ये नहीं सोचना कि 8 ही पास होंगे, हम तो कहाँ हैं, अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो कहीं ना कहीं तो हम उनके आसपास पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा समय पर हमें बहुत सारी युक्तियां बतलाते रहते हैं अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए, हमारी प्रगति कैसे हो, तीव्र गति से कैसे परिवर्तन हो। बहुत सारी ऐसी युक्तियां हमारे समक्ष रोजाना मुरली के माध्यम से बाबा बताते हैं। तो पेपर तो जीवन में बहुत आते हैं, जैसे वरदान में था ना, पेपर तो आएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को विस्तार में नहीं जाना, उसमें उसके सार में उसका समाधान करने के लिए मन बुद्धि को चलाना है। तो तीन बातें पास भी दोनों रहने के लिए बताई थी, कौन सी? पास होना है, पास रहना है, पास करना है, और चार पास हो गए, आप सब पास हो गए। तो एक है बौद्धिक स्तर पर, लेकिन वास्तव में जब हम धरातल पर आते हैं, जमीनी स्तर पर जब पुरुषार्थ करने की बात आती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं कि उस समय जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं कहीं धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। ज्ञान मार्ग में जब नवजीवन प्रदान होता है, नया जीवन मिलता है, तब तो रास्ता क्लियर रखता है, बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाई देते हैं, स्वर्ग के सीन दिखाई देते हैं, कभी कभी साक्षात्कार भी हो जाता है, ब्राह्मण परिवार का प्यार भी मिलता है, ऐसे महसूस होता है जैसे भगवान ही हमारे साथ योग लगा रहा है। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत तो एकदम हाई लेवल से शुरू होती है, उसमें सारी परिस्थितियों को पास करने के लिए बहुत ताकत आ जाती है अंदर में। सभी अनुभवी होंगे कि जैसे हमने इस मार्ग पर कदम रखा तो कई तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी होगी, लेकिन हम सब ने उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनको पास करने के लिए ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि सहज रूप से पास होते गए। जो भी कठिनाई हमारे सामने आती थी उनको पार करने की ताकत अपने आप ही आ जाती थी, भले पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार हमें भांति भांति की बातें कहते थे, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, एक नहीं सुनी, सिर पर कफन बांध लिया तो फिर चल पड़े। कहते ना, उखली में सिर दिया तो मुस्लिम से क्या डरना। और उस हर परिस्थिति में हम पास होते गए, लगभग 3-4 साल की यात्रा तक। उसके बाद फिर वास्तविक पुरुषार्थ शुरू होता है। जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, चलना आरंभ कर देता है, तो तब तक तो माँ बाप उसकी देख रेख अच्छी तरह से करते हैं, माँ भी उसको अच्छी तरह खिलाएगी पिलाएगी, मालिश करेगी पालिश करेगी, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको अपने पाँव पर चलना पड़ता है। बच्चा 10-12 साल का हो जाए, फिर माँ को कहे कि मेरी मालिश करो तो माँ करेगी मालिश? मालिश नहीं करेगी, फिर थप्पड़ मारेगी वो। ऐसे इस ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते बचपन के दिन बुलाना देना। 7-8 दिन पहले मुरली था, मुरली में था, बाबा वार्निंग देते हैं तुमको, कौन सी? बचपन के दिनों को भूल नहीं जाना, ये वार्निंग थी। तो बचपन तो हमारा एकदम ऐसे पलता जैसे हम गलीचों पर चल रहे हैं, जैसे फूलों की बरसात हो रही है। हर ब्राह्मण के मन में हमारे प्रति बहुत उच्च कोटि की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहती हैं, और हमारी भी, हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविक जो पुरुषार्थ शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब हमारे ही अपने संस्कार हमारे सामने ही अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं, जब मन बुद्धि भटकने लगता है, हमारे अपने ही संस्कार हमको इतने तंग कर देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे लगता है और वही संस्कार फिर दूसरों में भी दिखाई देने लगते हैं, जो पहले हमको बहुत प्यार करते थे उनके प्रति धीरे धीरे फिर हमारी भावनाएं भी थोड़ा कम हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे इस लाइफ में, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तो सबसे पहली बात है, अगर पास विद ऑनर होना है तो किसी भी बात में हमको डिसहार्टेड नहीं होना है, किसी भी कीमत पर निराशावादी नहीं बनना है, किसी भी कीमत पर अपने मन में होपलेस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं बनना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि जिसने हमारे पर नजर डाली है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, जिसने हमारा चुनाव किया है, वो कोई संसार का इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उसने हर तरीके से हमको परखा है, देखा है, जांचा है, तभी तो उसने हमको यहां तक लाया है। इतने बड़े संसार को चलाना है तो कोई साधारण आत्मा ही नहीं है वो। तो हम कहीं ना कहीं अपनी योग्यताओं से अनभिज्ञ हो जाते हैं। जो हमारे में विशेषता हैं, जो गुण हैं, कलाएं हैं, उनको तराशने के लिए, उनको बाहर निखारने के लिए बड़े लंबे समय का टाइम चाहिए, अभ्यास चाहिए। इसलिए इस मार्ग में धैर्यता बहुत चाहिए। जैसे बाबा धैर्य का सागर है, इतने दशकों से यज्ञ की स्थापना हुई है, 8-9 दशक होने जा रहे हैं। अगर हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के इतिहास को पीछे देखें, जो हमारे में परिवर्तन होना चाहिए था, उस अनुपात में परिवर्तन स्वयं को भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी बाबा रोज मीठे बच्चे कह के हमें आथत देते हैं, धैर्यता देते हैं, तसल्ली देते हैं। कल की मुरली में था, तसल्ली देते हैं। तो स्वयं भगवान हमको रोज तसल्ली दे रहा है, तो क्या हम अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते हैं? वो धैर्यता का सागर हमें अलग अलग तरीकों से, जो मायावी संसार में हम फंसे हुए हैं, उनसे निकालने के लिए इतने प्यार से हमको इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहा है, बड़े रोचक तरीके से, रमणीक तरीके से, एकदम सहज तरीके से। तो फिर भी हम अपने धैर्य को क्यों छोड़ दें? क्यों हम अपना डिसहार्टेड हो जाएं? तो बहुत लंबा धैर्य चाहिए, इसमें लंबी यात्रा है। बाबा कहते हैं जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीना है। लेकिन कुछ दिन पहले था, इसी सेंटेंस को दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक पढ़ते रहना है। तो वास्तव में जीते जी मरने में ही सुख है। तो पहली बात है, निराशावादी नहीं बनना है, कभी भी डिसहार्टेड नहीं होना है। दूसरा, कभी धैर्यता नहीं छोड़नी है, बहुत धीरज चाहिए। इसलिए बाबा कहते धीरज धर्म मरुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे नहीं, आ गए हैं। ये वर्तमान जो प्रेजेंट मोमेंट है, यही सुख का है। अगला क्षण तो हमको पता ही नहीं है कि आगे 2 मिनट में, आने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है, किसको पता है? अभी का क्षण हमारे पास है, अभी के समय में शक्ति है। अगर अभी हमने अपने संकल्प शक्तिशाली कर लिए, शक्तिशाली संकल्पों के बीज बो दिए और उसकी सही तरीके से पालना करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा ही निकलेगा। तो तीसरी बात है, संकल्प हमको बहुत उच्च कोटि के रचने हैं। संकल्प बीज है, हर संकल्प में ऊर्जा समाई हुई है। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं हमेशा सोमान में स्थित रहो, सोमान में ताकत है। वो वास्तव में सोमान की शक्ति वास्तव में हमारे अंदर है ही वो, लेकिन वो सोई हुई है। इसलिए बाबा रोज ज्ञान का जल देते रहते हैं ताकि वो बीज कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाए। लेकिन कई बार सोमान का बीज अंकुरित ही नहीं होता है, वो केवल बीज ही दिखाई देता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन आगे क्या? वो तो केवल एक बीज है, संकल्प रूपी बीज। लेकिन उसको अपने जीवन में लाने के लिए वो बीज अंकुरित हो, उसकी हरियाली दिखाई दे, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दृष्टिगोचर हो, हमारी व्यवहारिकता में दिखाई दे, उसके लिए उसको ज्ञान का जल चिंतन का जल ये देना बड़ा जरूरी है। तो चिंतन बहुत करना बहुत आवश्यक है। जब तक हमने चिंतन आगे नहीं बढ़ाया तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। जो जीवन में खुशी होनी चाहिए, खुशी कब होती है? जब मनुष्य पास होता है, क्योंकि हर समय परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, वो आनी है। ये नहीं हमको सोचना है कि परिस्थितियां हमारी खत्म हो गई, हम निर्विघ्न चल रहे हैं, अंत तक आएंगी वो, और बहुत विकराल रूप से आएंगी। वो तो जो आई हो तो एकदम छोटी मोटी थी, अगर बड़े थे बड़ी आए ना वही छोटी मोटी है, लेकिन आगे तो विकराल रूप में आएंगी। बाबा ने कहा अंत में इतने कड़े पेपर आएंगे जो मन में भी नहीं था, चित्त में भी नहीं था। वो स्वयं से भी आ सकते हैं पेपर, वो ब्राह्मण परिवार से भी आ सकते हैं, वो प्रकृति से भी आ सकते हैं, अनेक प्रकार की आत्माओं से भी आ सकते हैं। बाबा ने कहा अंत में तो ऐसे होगा पांच पांच आत्माएं भी अंदर में घुस जाएंगी अंदर में। एक तो पहले स्वयं आत्मा ही नहीं, हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और पांच अंदर में घुस जाए तो क्या हाल होगा? ये तो उस तरह की हाल हो जाएगा जैसे एक बंदर है, वो पहले बहुत चंचल है और ऊपर से उधर को उसको मधुमक्खियां 8-10 डंक मार दें, पागल हो जाएगा, और थोड़ा एक शराब की बोतल पिला दे कोई और ऊपर से 10 आत्माएं घुस जाए, उस बंदर की क्या हालत होगी? वैसा हमारा मन है, ये इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, दूसरों के संस्कार, लंबे समय से हमने बुराइयां अंदर में रखी हैं, अपने ही संस्कार, जन्म जन्म की पता नहीं कौन से जन्म के कैसे संस्कार है जो अंदर में पड़े हुए हैं, वो सब बाहर निकलेंगे। तो उनसे भी घबराना नहीं है, कई आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क है, पता नहीं कौन से जन्म में हमने किसी की हत्या भी की हुई है, ये तो अब पता कि अब इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में किसको खबर है, वो तो अंत तक ये सब चीजें आएंगी आएंगी। इसके लिए हमें हमेशा एवरेडी रहना है, लेकिन लंबे समय का अभ्यास चाहिए, इसके लंबे समय का सोमान का अभ्यास। सोमान को केवल हमको बुद्धि तक नहीं रखना है, बल्कि वो सारा सोमान की पावर हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाए, और उसका परिणाम है ये कर्मेंद्रिय हमारे अधीन रहे, कंट्रोल में रहे। उसका परिणाम है ये जो आंखें हैं चंचल ना हो। उसका परिणाम है कि हम झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, कान रस। जैसे कोई अगर हमको होमवर्क दे दिया जाए, कभी आपको ये चिंतन करना है इस विषय पर, वो बहुत भारी पड़ जाता है। अगर बोला जाए कि गप शप मारनी है तो पूरा दिन निकल जाएगा, व्हाट्सएप चलाना है तो कब एक दिन पूरा जाता पता चलता है, और चिंतन करने के लिए बोला जाए तो, अगर कहा जाए फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाओ तो पूछ पूछ के ही बना लेंगे, किसी को नहीं आता ना तभी जानकारी कर लेंगे, और जब चिंतन के लिए उसके लिए चर्चा नहीं करेंगे हम, तो हमारे अपने ही संस्कार कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, अपने आप को ही रोज डंक मारते रहते हैं, वो हम दुखी होते रहते हैं उनसे। वास्तव में दुख हमें बाहर से नहीं आता है, दुख का खुद ही हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। किस जैसे बोला कि विस्तार में नहीं जाना है, अब परिस्थितियां जीवन में आती हैं, कभी को कुछ बोल रहा है कभी को कुछ बोल रहा है, पता है सबका पार्ट अपना अपना, ये जानते हुए भी हम विस्तार में फिर चले जाते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए, चाहिए चाहिए के गीत संडे की मुरली में था ना, कि जो आत्मा भरपूर नहीं होगी तो वो चाहिए चाहिए के गीत गाएगी, और जो भरपूर होगी वो ना में भी हां का अनुभव कर लेगी, अर्थात अगर साधन नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो भी ठीक है। तो मन में भरपूरता चाहिए, ज्ञान की भरपूरता। तो सुमान का हमको चिंतन करना है, एक ही सुमान है उसको हमको पूरे दिन उसका चिंतन करना, लंबा खींचना उसको। एक ही सुमान का हम महीने भर भी चिंतन किया जा सकता है। अगर आज हम यज्ञ की भाई बहनों को देखते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों को, उनकी स्थिति इतनी ऊंची क्यों बनी है, दादियां इस मुकाम पर कैसे पहुंची है? आज भी हम कभी कभी अगर रतनमोहन दादी से मिलने जाते हैं तो अभी भी उनको ज्ञान का इतना नशा की बात मत पूछो। अभी हम एक महीना पहले गए थे, अभी कितनी एज है, 98। तो जब दादी ने 4 दिन की मुरली इकट्ठी रिकॉर्डिंग कर दी शाम के टाइम में, और हमको बोला जाए एक दिन में 4 बार मुरली पढ़ो, तो कितना माना अंदर में ऐसे संस्कार हैं कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल मटेरियल मिलता है उससे जैसे हम दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं भरे हमारे। तो सोमान हमारे संस्कारों को परिवर्तन करेगा, सोमान हमारी आंतरिक चेतना की शक्ति को जागृत करेगा, क्योंकि सोमान टाइटल दिया किसने, वो सर्वशक्तिमान ने दिया है, तो उसकी सारी शक्तियां। बाबा कहते जन्मते मैं तुमको दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, दिव्य जन्म का वरदान दे दिया, दिव्य दृष्टि दे दी है। हमारा जीवन वास्तव में जन्म होते ही सारा परिवर्तन हो गया है, उसने तो हमको जन्म होते ही टॉप पर रख दिया है, लेकिन हमने फिर से ब्राह्मण जीवन में सीढ़ी उतरना चालू कर दी। आते उसने हमको संपूर्णता का आयना दिखा दिया कि तुम ये हो, लेकिन हमने माना ही नहीं। उसमें तो मान लिया, लेकिन उसकी तह तक नहीं गए, बांध तक पहुंचने के लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया। हम ऊपर ऊपर ही बैठे हुए हैं, लेकिन उस तह तक जाएंगे तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो भी हमको पता चलेंगे, और फिर उन संस्कारों से हम घबराएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तले में जाओ, गहराई में जाएंगे तो घबराएंगे नहीं। तो हमको चिंतन की गहराई में जाना है, जितना चिंतन की गहराई में जाएंगे हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटी बाहर जाएगी, बाहर निकलेगी वो, और उस इम्प्योरिटी से हमको घबराना भी नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हैं वो अंदर में पड़े हुए हैं। इसलिए उसको उस चिंतन के माध्यम से उसको खत्म करना है, समाप्त करना है। जितना हम अपने मन बुद्धि को चिंतन के लिए टाइम देंगे तो हमारे अंदर की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अपने ही संस्कार हमको चिंतित करते रहते हैं। जब तक हम अपने आप को चिंता से नहीं मुक्त करेंगे तो दूसरों की चिंता भी हमको खाती रहती है। अपने परिवार की चिंता है, पड़ोस पड़ोस की चिंता लगी रहती है, अनावश्यक चिंताएं। अगर हम सारे दिन का विश्लेषण करें तो 90% तो हम अनावश्यक ही सोचते रहते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, जो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारे जीवन में देखें, सवेरे आंख खुलने से लेकर रात्रि तक जो हमको सोचना चाहिए था वो हमने नहीं सोचा, और 90% ऐसे ही सोच लिया, और उसी का बोझ हमारे सिर पर रहता है, और फिर उड़ेंगे कैसे। संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा, वरदान में डबल लाइट बनो, सारा तन मन धन मुझे दे दो। ये तन भी बोझ नहीं होना चाहिए, तन मन धन तीनों का बोझ नहीं होना चाहिए। तो कितना बोझ हमने मन के लिए रखा है, मन ही हमारा इतने संकल्पों से, इतने पुराने संस्कारों से बोझ लो चुका है कि बैठे तो हैं हम योग में, लेकिन मन बुद्धि तो योग तो लगा हुआ है, लेकिन कहीं और ही लगा हुआ है। तो सारा ध्यान अपने ऊपर देने की जरूरत है कि कहां तक हम अपने आप से सच्चाई सफाई से चल रहे हैं। तो ये कौन सी बात थी, तीसरी बात, सम्मान का चिंतन करना है। सम्मान का चिंतन करते करते नेक्स्ट जो है हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, पवित्रता को बढ़ाना है, और पवित्रता का अभ्यास लंबे समय से करना है। उसका जैसे हम कमेंट्रियां सुनते हैं तो खुद ही कमेंट्री तैयार करनी है, बार बार उस कमेंट्री को अपने कर्मेंद्रियों में सुहाना है ना। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे, योग की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन अभी सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठेंगे और सभी अपना हाथ, दाया हाथ कौन सा है, सज्जा हाथ मूंज गए ये सज्जा हाथ, ठीक है, राइट हैंड, इसको अपने सिर पर रखेंगे, ठीक है। अब ये सोचिए जैसे बाप दादा का वरदानी हाथ है, महसूस करेंगे जैसे परम धाम से पवित्रता का सागर महाज्योति अवतरित हो रही है सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के प्रकाशमय काया में प्रवेश हुई, बाप दादा अव्यक्त वतन से अवतरित हो रहे हैं और सीधा मेरे बाजू में बैठ गए हैं, और अपना वरदानी हाथ बाप दादा ने मेरे सिर पर रख दिया है। महसूस कीजिए जैसे वो पवित्रता के सागर का वरदानी हाथ मेरे सिर पर ठहर गया है। उसकी संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वो पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बना रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन गई हूं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर से चिपका हुआ है। वो पवित्रता के सागर की सारी शक्तियां मुझ आत्मा सहित मेरी इस देह में भी समाती जा रही हैं। सारी कर्मेंद्रियां शुद्ध, शांत, पवित्र होती जा रही हैं। ये आंखें जैसे पवित्रता की लाइट से भर गई हैं, अंग अंग में पवित्रता के वाइब्रेशन समा रहे हैं, सारा शरीर पवित्रता की लाइट से जगमगा रहा है। हाथ पांव सारे का सारा शरीर, आंखें नाक कान लाइट ही लाइट है। सारा शरीर पवित्रता की लाइट से जगमगा रहा है। मैं मस्तक सिंहासन पर बैठ, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र अनुभव कर रही हूं। मुझसे निरंतर पवित्रता के शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्वों सहित विश्व की सर्व आत्माओं में समाते जा रहे हैं। मैं कितनी ना पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं पवित्रता का सागर अपना धाम छोड़कर मुझ आत्मा के पास बैठ गया है। अव्यक्त वतन से स्वयं इस सृष्टि के आदि पिता मेरे बाजू में बैठे हैं, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वो मुझे कितना ना प्यार करते हैं, कितने उपकार किए उसने मेरे पर। निरंतर वो मुझे अपनी कंपनी देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कितनी ना तकदीरवान आत्मा हूं, संसार की कोटों आत्माओं में से, करोड़ों आत्माओं से उसने मुझे चुना, मेरी विशेषताओं को देखा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। कितना प्यार का सागर वो जैसे मेरे ऊपर कुर्बान गया हो। पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता जैसे वो मुझ में समाहित कर रहा है। ओम शांति। तो कुछ एक अभ्यास प्रैक्टिकल में करने हैं, क्योंकि मन को एकाग्र करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम स्थूल रूप से इन कर्मेंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं तो एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। नहीं तो मन में संकल्प करेंगे और कब टाइम पूरा जाएगा पता नहीं चलता है। इसलिए घरों में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं संगठित रूप से भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। योग की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। कभी बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है, या कभी महसूस कीजिए जैसे मैं सूक्ष्म वतन में बैठा हूं और बाप दादा ने मेरे हाथ पकड़े हुए हैं दोनों हाथ, और सारी शक्तियां ट्रांसफर हो रही हैं। जैसे वो सीन इमर्ज करना है 1969 18 जनवरी बाप दादा ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और अपनी सारी शक्तियां दादी जी को बिल कर रहे हैं, उसी सीन को इमर्ज करना। मैं अव्यक्त वतन में बैठा हूं, बाप दादा मेरे सन्मुख है, मेरे हाथ पकड़े हैं और सारी की सारी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक योग का सुंदर अभ्यास हो सकता है। और अभ्यास कर सकते हैं जैसे बाबा आए और मुझे यहां से निकाल के सीधा ऊपर ले गए सूक्ष्म वतन में, और मुझे अपने हाथ पर जैसे मुझे आत्मा को रखा हुआ है, और जैसे बाप दादा के मस्तक से नयनों से वो किरणें जा रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन रही हूं, उसकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, और फिर बाबा वहां से वापस लाके फिर इस देह में मुझे वापस रखेंगे। ऐसे योग के अलग अलग प्रयोग करने हैं। कभी कभी ऐसे महसूस करना जैसे अव्यक्त वतन से बाप दादा आए और बाबा ने अपने हाथ मेरी आंखों पर रख दिए, जैसे गुलजार दादी जी और जानकी दादी जी ऐसे एक दो की आंखों पर हाथ रखते थे, ऐसे बाबा ने अपने हाथ मेरे आंखों में रख दिए। अब ये आंखें संपूर्ण पवित्र बन गई हैं। ये जैसे आंखें संपूर्ण पवित्रता इनमें समा गई है। अब ये पहले वाली दृष्टि नहीं रही। जहां भी ना, जैसे परसों के मुरली था, बाप तुम्हें क्या करने आए हैं, नजरों से निहाल करने आए हैं। वो योग का प्रयोग है। एक वास्तव में जो हम मुरली सुनते हैं केवल सुनने तक नहीं रखना, उसको योग में कन्वर्ट कर देना। योग के बहुत सारे अभ्यास मुरली में ही होते हैं। योग केवल ही नहीं बैठने, बाबा कहते बिंदु सोचेंगे बोर हो जाएंगे, सारी मुरली को योग में कन्वर्ट कर देना। अब घर में भी बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, तो बात करना भी तो योग ही है ना। उनकी बातों को बाद में याद करना वो भी तो योग ही है ना। तो बाबा की मुरली को याद करना भी योग ही है। अगर मन बुद्धि भटके बैठ जाओ, आज बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर क्या था आज मीठे बच्चे, कौन से नशे में रहो, सदा खुशी में रहो कि हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। तो वो सारा चिंतन करो क्या बोला, गीत कौन सा था, और कल का गीत कौन सा था, तुम्हें पाके जहां पा लिया नहीं खा लिया ने, एक दूसरा गीत था, जले ना क्यों परवाना, कल का था गीत, परसों का था, तो कल क्या था, यही था तुम्हें पाके, चलो पाना था सो पा लिया, खाना था सो खा लिया। ठीक है, तो बुद्धि को पीछे लेके जाना, सोचना है आय का वरदान, फिर उसका चिंतन करना है कौन कौन से पास के आय का स्लोगन क्या था आज का, डैश होकर डैश रहो तो डैश हो जाएंगे क्या, हाँ, बाप के स्नेह में कुर्बान हो जाओ तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो मन बुद्धि को चलाना है ऐसे, मुरली में डुबो देना माना भी एक योगी है। मुरली माने ज्ञान का हर पॉइंट योग की ताकत है। वो योग में शक्ति कहां से आती है, बिना ज्ञान के योग लगा सकते हैं हम, ज्ञान में योग है हमारा, खाली रूखा सौखा योग नहीं है। इसलिए पढ़ाई को प्राथमिकता अनिवार्य है। बिना ज्ञान के योग में बैठेंगे तो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे हमारे ज्ञान के चिंतन से। योग में बैठे बैठे भी चिंतन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि खाली हम, हाँ, ज्ञान का चिंतन करते करते फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम एक ही संकल्प पर ठहर जाएंगे और उस एक संकल्प में जैसे परमात्म प्यार का अनुभव होगा और उस लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो बीज रूप है और बीज के पहले ज्ञान का विस्तार करना अनिवार्य है। खाली बीज को बीज अनुभव करने के लिए उस बीज के अंदर क्या क्या समाया वो भी तो पता होना चाहिए ना। या मैं मास्टर बीज रूप हूं, खाली इतना चिंतन करने बैठ गए उससे क्या होगा फिर, लेकिन बीज के अंदर क्या क्या है। संडे की मुरली थी, बाबा बाप तुम्हें कैसे किस रूप में देख रहे हैं, मुरली का स्टार्टिंग क्या था, रॉयल्टी को कौन सी रॉयल्टी, किन रूपों में रॉयल्टी देखी, तीन रूपों में, कौन कौन सी, आत्मिक अनादि रूप, अनादि में आत्मिक रूप। अब अनादि में आत्मिक रूप है तो बीज रूपी है परम धाम का वो स्थिति, तो वो कौन सा कैसी रॉयल्टी होगी वहां, निराकार है, ये तो हो गया रूप। और उस रॉयल्टी में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि बुद्धि को ठहराने नहीं, वहीं खींचना है। सोच लो अभी मैं आत्मा परम धाम पहुंच गई, अब मैं वहां देख रही हूं, मैं वहां कैसी हूं और वहां क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, वहां तो वाणी नहीं है, कोई आवाज ही नहीं है, डेड साइलेंस है, वो स्वीट साइलेंस है। और क्या है वहां, चारों ओर जैसे चकमक चकमक मणियां जगमगा रही हैं और बाबा जगमगा रहे हैं। और क्या है वहां, कोई संकल्प ही नहीं है। और क्या है वहां, जो कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है एकदम। और क्या है वहां, शांति है, शक्ति है। और क्या वहां, जो हमारे ओरिजिनल गुण है, जो बाबा कहते 7 गुण है, उन गुणों का मैं आत्मा वहां अनुभव कर रही हूं। अब वहां तो अनुभव नहीं है कोई, अनुभव तो हमको यहां करना है, चिंतन तो हम यहां कर रहे हैं, लेकिन अनुभव हम वहां का कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बार बार ड्रिल करो ड्रिल करो। अच्छा चलो बुद्धि ऊपर नहीं जाती तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। बाबा ने और भी आसान तरीका बता के चारों धाम को याद करो। अच्छा चारों धाम को कैसे याद करेंगे? एक तो बाबा के रटे रटाए महावाक्य याद करेंगे, अगर उदास हो जाते झोपड़ी में चले जाओ, और पावरफुल होने तो शक्ति स्थान पर चला, समान मन तो बाबा के कमरे में, और व्यर्थ आता तो इष्टियाल में, पूरा हो गया काम। इतने तक पूरा जाएगा? नहीं, और कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे? अभी जैसे यहां बैठे हैं, अब हमको शांति स्तंभ में परिक्रमा करनी है, क्या सोचेंगे उसके बारे में? हाँ, वहां क्या क्या लिखा सारा याद करो। कितनी बातें लिखी हैं वहां? हाँ, चार बातें होगी। और क्या क्या लिखा है वो नहीं पता है? वही तो पता करना है। हमारी लाइफ कौन सी है? स्टूडेंट लाइफ है। तो 18 बातें लिखी हैं वहां, किसको याद है 18 बातें? अगर बाबा लास्ट में केवल यही पेपर ले कि मैं तुमको पास भी कर दूंगा, तुम ये बता देंगे शांति स्तंभ पर कौन सी 18 बातें लिखी है? बोले बाबा, बाकी बोलेगा भाई चलो तुमने योग नहीं लगाया छोड़ दे, सेवा नहीं की छोड़ दे, अब बता 18 बातें कौन सी। तो अच्छा जाते अभी पिक्चर ले। हमें पुरुषार्थ को रमणीक करना है, गंभीर नहीं करना है। रमणीक करेंगे तो मजा आएगा, गंभीर करेंगे तो धीरे धीरे ना वो गंभीरता डिप्रेशन में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ माना बच्चा कैसे उमंग उत्साह से, कॉपी पेंसिल हाथ में होती है, इसलिए बाबा कहते कच्छ में हमेशा कुर्म रहनी चाहिए। तो योग में बैठे बैठे 18 बातों याद करो। अभी याद करते हैं, देखते हैं कितनी आती है, बहुत दिन हो गए याद हमने भी नहीं किया है। तो सबसे पहले है टावर ऑफ पीस, उसके नीचे हैं 6 बातें हैं। सबसे पहले लिखा है याद की यात्रा नहीं है, पहले दिव्य गुण धारण करना और कराना। अब एक तो इतना याद कर लिया, अब दिव्य गुण कितने हैं? 36। कौन कौन से? अब मुसीबत हो गई कि तो 18 बातें बाबू और ऊपर से 36 ये आ गई। बाबा भी क्या कहते, मैं तुमको बहुत सहज बताता हूं लेकिन धीरे धीरे कितनी कितनी बातें कर। फिर बोला तुमको ये भी गुण धारण करना, ये भी करना, ये भी करना। अब वो 36 गुण कौन से हैं? याद करने का सहज तरीका, उसको अल्फाबेटिकली लिखना है, या इंग्लिश में या हिंदी में। तो अल्फाबेटिकली में जैसे अ से है, अथक, आज्ञाकारी, अंतर्मुखता, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये 5 है। फिर ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, रमणीकता, धैर्यता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, निश्चिंतता, निर्भयता, निर्भीकता, नियमितता, स्नेह, सहयोग, श्रेष्ठता, सहनशीलता, ऐसे 36 हो जाएंगे। साहस, अनुशासन, हाँ जी, ईमानदारी, शालीनता। तो ऐसे फिर देखो वहां अभी एक ही दिव्य गुण तक ही पहुंचे तो 1 घंटा तो ऐसे बीत जाएगा हमारा, तो जिंदगी तो ऐसे चली जाएगी फिर। अच्छा दूसरा क्या है? याद की यात्रा में रहना। तीसरा पवित्र बनना और बनाना। उसके नीचे 3 बातें हुई, उसके नीचे 3 बातें, 6 कौन सी हैं? 3 उसके नीचे वाली 3 कौन सी हैं? वो उस तरफ है, पावर ऑफ प्योरिटी की, पावर ऑफ माइंड की तरफ है। उसमें है 3 बातें हैं। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप से तुम बच्चों की अव्यक्त बनकर पालना कर रहे हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने आपके जीवन को कमल फूल समान बनाया। तीसरी बात है, वो अभी भी तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। बड़े लंबे समय से प्रैक्टिस भूल गए ना, इसलिए बार बार करना पड़ता है, इसमें अपना भी कल्याण हो जाता है तो बार दूसरा और फिर दूसरी तरफ आ जाओगे। कितनी होगी? 6 बातें होगी ना। अब दूसरी तरफ टावर ऑफ नॉलेज, तो क्या लिखा वहां? समय बहुत कम है, गफलत करो। क्या है? अच्छा गफलत मत करो, मन सुन रहे आप ठीक ठाक। समय बहुत कम है, गफलत मत करो। दूसरा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर नीचे मीठे बच्चे, शिव भगवान उवाच, शिव परम पिता सभी के पिता हैं, भारत सब देशों से महान देश है, आबू सब तीर्थों से महान तीर्थ है, ये रहस्य सभी को बताना। कितनी होगी बातें अभी? 9 बातें होगी। अभी नेक्स्ट टावर ऑफ माइट, वहां क्या लिखा है याद है किसको? पहले लिखा है निश्चय में विजय है। देखो याद तो है आपको, आदत तो वैसे याद ही है, निश्चय में विजय। दूसरा ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो और शक्ति स्वरूप बनो। तीसरा श्रीमत पर चलेंगे तो डैश बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये तीन बातें होगी। उसके नीचे आ जाओ, अभी नीचे क्या लिखा होगा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा, मीठे बच्चे तो पक्का हो गया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्किल दे बच्चे, क्या लिखा है, स्किल दे बच्चे, फिर लाडले बच्चे, तीन बातें क्या लिखा है, स्किल दे बच्चे, विक्रम तो विनाश हो गए पहले कर दिए हमने, अभी दूसरा और कुछ करना है। हाँ ये है, ये लास्ट वाला पुरुषोत्तम संगम, ये तुम्हारा जन्म हिरे तुल्य है, तो क्या करना फिर, तो है तो है ही है फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं आप फिर अगर हीरे तुल्य तो सोना क्यों बन रहे फिर चलो एक बात वो वहां और कोई है। फिर लास्ट में टावर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी में तीन बातें हैं, कौन कौन सी, किसी को दुख नहीं देना है, दूसरी बात, ये दूसरी बात होगी नहीं नहीं पवित्र नहीं है, नीचे मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नीचे आ गया। एक बात और रहेगी, तो ये 18 बातें याद करनी है। अब ये 18 बातें जब याद करेंगे, इसी में शक्ति समाई हुई है, और महसूस करना जैसे पूरी वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। घर में बैठे हैं चारों धाम की, पूरे मधुबन की एनर्जी, पूरे वाइब्रेशन सारे मेरे अंदर समा रहे, मैं खुद मधुबन हूं, महसूस करना है। वो सारा मधुबन मेरे अंदर समाया हुआ है, ऐसे महसूस करना है। वो सारे वाइब्रेशन चलते फिरते वजह से मेरे से प्रवाहित होते जा रहे हैं, वो सारे प्रकंपन से मैं भरा हुआ हूं। तो नए सोमान करने हैं, ऐसा नहीं कि जो बाबा ने बताए हैं सोमान उसी पर, अपने सोमान याद करने हैं। बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अलग अलग से मैं महायज्ञ हूं, खुद यज्ञ हैं हम, तो नए नए सोमान जागृत करने हैं। ऐसे व्यर्थ को समाप्त करना तो इष्टियाल में, अब इष्टियाल में क्या करना है, वो सारे चित्र देखो कितने चित्र लगे, अभी चित्र बदल गए सारे, पहले वाले चित्र हमको याद ही, ये वाले याद करने पड़ेंगे अभी, और उसके बाहर 21 चित्र लगे दादियों के, वो सब याद करो, कौन कौन सी दादियों के, नहीं कर्म वाइज बताओ, महसूस करना जैसे वो दादियां मेरे समक्ष में है। सबसे पहले मम्मा का चित्र है तो वहां खड़े हो जाना, मम्मा के बारे में सोचना, पहले खाली चित्र को नहीं देखना। मम्मा का स्लोगन क्या था, हुक्मे हुक्म चलाए रहा है, वो देखना है, और मम्मा के महावाक्य याद करने हैं, कल की मुरली में मम्मा के महावाक्य थे, है ना। फिर दूसरा चित्र किसका है, और वरदान लेना उन सबसे, क्योंकि पूर्वज हैं सारे वो। दूसरा चित्र है दादी जानकी का, दादी जानकी का क्या था स्लोगन, मैं कौन मेरा कौन। तीसरा चित्र गुलजार दादी का, उनका स्लोगन हाँ सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। तीसरा चौथा चित्र दादी प्रकाशमणि जी का है, दादी जी के क्या महावाक्य थे, निमित निर्माण और निर्मल वाणी। चौथा मनमोहनी दीदी का, राइट अब घर जाना है ना। तो कई सेंटर में ना अमृत वेले गीत बजाते हमने देखा, अब घर जाना है, यहां तो तब बजाते जब कोई शरीर छोड़ता है तो कभी कभी ना सवेरे सवेरे कान में लगा के अब घर जाना है, यहां नहीं बजाना, नहीं तो यहां सोचेंगे पता नहीं किसने शरीर छोड़ दिया तो चौथा चित्र है दीदी मनमोहनी का। पांचवा छठा है निर्मल शांता दादी, फिर सातवां चित्र है ब्रजेंद्रा दादी, फिर चंद्रमणि दादी, फिर रत्नमणि दादी, फिर शांतामणि दादी, फिर मनोहर दादी, फिर उसके आगे है हृदय पुष्पा दादी, फिर उसके आगे है उनके स्लोगन भी, हाँ हाँ उनके स्लोगन ठीक है। तो दादी चंद्रमणि का स्लोगन क्या था, अजय किसने देखा दादी चंद्रमणि को, बहनों ने तो सब देखा होगा ना, और किसने देखा है, कितनी गजगोर थी दादी की। तो दादियों की पालना बड़ी जबरदस्त थी। तो ऐसे फिर आगे हैं दादी चंद्रमणि का है, फिर उसके आगे पुष्प शांता दादी है, फिर शीलिंद्रा दादी है, संतरी दादी है, ध्यानी दादी है, फिर ऑलराउंडर दादी है, फिर कुंज दादी है, फिर लास्ट में संदेशी दादी है, संदेश कुंज दादी लास्ट में, संदेशी दादी पहले। तो ये तो वैसे है, ये है मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। उसका अर्थ ये नहीं कि हमको इसमें कम से कम व्यर्थ तो हम मुक्त रह रहे हैं ना, नहीं तो मन बुद्धि जाएगा कहीं ना कहीं। तो व्यर्थ से मुक्त होने का है, बाबा ने ऐसे बोला अगर व्यर्थ से मुक्त हो तो वहां आ जाओ, तो वहां आगे करना क्या है, तो वहां पूरी हिस्ट्री को देखो, उस कालखंड में चले जाओ। वास्तव में हमारा त्याग तपस्या तो कुछ भी नहीं है, त्याग तपस्या तो दादियों की थी सचमुच। वो हमने खुद आंखों से देखा हुआ है। हमारे टाइम में भी जब हम नए नए ज्ञान में है तो बहनों को उस समय भी इतने सुख सुविधाएं नहीं थे, कितना मिलो मिलो पैदल जाना पड़ता था खाने पीने के लिए। हमने खुद देखा है बहनें अपना खाना छोड़कर हमको खिला देती थी, वो बताती नहीं थी। वो बहनें दादियों की पालना ली हुई बहनें थी सारी। वो तो केवल वो इतिहास केवल हम उसको बताए नहीं, बल्कि वो इतिहास हमारे में भी झलके, वो त्याग तपस्या हमारे में भी थोड़ा सा झलक तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो उसी वंश के ना, उन्हीं उसी कुल के तो है ना, उसी परिवार के तो है ना। तो प्रैक्टिकल में कुछ तो त्याग तपस्या चाहिए ना, क्योंकि साधनों का तो अंबार दिन प्रतिदिन लग रहा है और ढेर सारे साधन आएंगे, इतने आएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साधन ही वास्तव में हमको पागल कर देंगे अगर हम साधनों में अपनी बुद्धि को लगाएंगे, तो हमारी साधना सभी उसी में लोप हो जाएगी। तो ये तीसरी बात थी, चौथी बात थी, कहां चले गए पास भी धन और रखने के लिए। ये सुमान पवित्र ना, पवित्रता को बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा स्थिति। क्योंकि जिस तरीके से संसार की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, यज्ञ के भी देख रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही है, बदलाव तो आना है निश्चित तौर पर है। अंत में हमें अपने आप को साक्षी स्थिति के आसन पर स्थित होकर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में हमारे सामने ही ऐसे ऐसे खून की नदियां बहेंगी, जो पहले बाबा ने सारे सीन बता दिए हैं। तो सत्यता से हमको दूरी बनाकर रखनी है, उसको स्वीकार करना है, और उसके लिए उस साक्षी दृष्टा अवस्था को अनुभव करने के लिए लंबे समय से अशरीरीपन का अभ्यास है। जितना हो सके एक सेकंड का समय मिले, बाबा ने कहा एक सेकंड एक मिनट, तुरंत शरीर से डिटैच हो जाओ, जैसे मैं शरीर में हूं ही नहीं। जैसे बताया ना बीच में, जैसे बाबा मुझे यहां से निकाल के ले गया और सीधा परम धाम में बाबा मुझे ले गया, या अव्यक्त वतन में जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं और जो भी मेरे में कमी रही है बाबा जैसे उसको पूर्ति कर रहे हैं, उसको जैसे भर रहे हैं और मैं संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूं। छोटे छोटे अभ्यास करने हैं अशरीरी अवस्था के, आत्म अभिमानी अवस्था, चलते फिरते, क्योंकि पहला पाठ जब तक हमारा पक्का नहीं है हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। चलते फिरते महसूस करना मैं आसन पर बैठी हूं जब भी टाइम मिले। और टाइम तो सच में जितना ब्राह्मणों को टाइम मिलता उतना संसार में किसी को भी टाइम नहीं है। हम ब्राह्मणों को बहुत टाइम मिलता है लेकिन बहानेबाजी हम बहुत करते हैं। टाइम कोई वास्तव में, ये तो हमारी सारी आंतरिक सोच की बात है, ये अंदर की बात है। योग में ये नहीं कि हम यहां ही भट्ठी करें, भट्ठी तो वास्तव में हमारी जहां हम रहते हैं वहां होती है भट्ठी। होता क्या है, जहां हम रहते हैं घर में वहां बैठे मधुबन को याद करते हैं, और मधुबन में आते तो घर को याद करते हैं, है ना। वाह 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 वाह, कितनी नजर रखनी। अब जब से आया कोई है ऐसा जिसने घर में एक बार भी फोन नहीं किया हो, देखो गिने चुने नहीं है, बाकी ने सबने फोन घुमा ही दिया। और फोन में भी हमने देखा क्योंकि हाँ जी हाँ नहीं, पहले से हम बता सकते हैं भाई हमारे अभी साधना का टाइम है, तो फिर बाद में उनको नाराज होने के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ उनको। हाँ वो तो उनको खुश करना तो बड़ा आसान काम है, उनको उनकी क्या इच्छा है उसको पूरा कर दो बस। और साधना में अगर हमारी सच में शुभ भावना कामना सबके प्रति है तो हमें अपने नियमों पर पक्का रहना पड़ेगा। हम अपने नियमों में लूज हो जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहती है उनके साथ, मोह रहता है। मोह छूटता क्यों नहीं है, बाबा कहते तुमको तो इसको भी नहीं याद करना है, कल की मुरली में था, इस देह को ही भूल जाना बिल्कुल, और सब संग तोड़े एक संग जोड़ने हैं। लेकिन हम उस संघ को तोड़ के और संघ तो हम जोड़ देते हैं, उल्टा काम हो रहा है। तो सूक्ष्म साधन है वास्तव में, तो अपने अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करनी है। जब भी हमको मौका मिले शरीर से डिटैच हो जाओ, जैसे शरीर, जैसे बाबा ने कहा ना तुम तो जैसे मुर्दे हो, मरे हुए, शरीर तो जैसे मर गया है, जीते जी हमारा नया जीवन हुआ, नव जीवन प्रदान किया उसने, तो नई स्मृतियां, नई सोच, नए संकल्प, नई सुबह, नया रात, नया उमंग, नया दिन, हर चीज नई नई है। नवीनता चाहिए जीवन में, पुरुषार्थ में भी नवीनता चाहिए, हर रोज की पुरुषार्थ में नवीनता चाहिए। नवीनता नहीं है तो धीरे 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 उदासी आएगी जीवन में, और वो पुरुषार्थ हमको नवीनता खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरे के तो हम क्लासे हम ढेर सारी सुनते रहते हैं सबकी, कितनी क्लासे सुनी होंगी, लेकिन वो क्लासे हमारे जीवन में कहां आई है। क्लास वास्तव में खुद ही खुद को क्लास करानी है। दूसरे की क्लास सुनना आसान है लेकिन धारणा तो खुद को करनी पड़ेगी, और दूसरे की सुनाई हुई धारणा बातें उतनी होंगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है जो भी आपने सुना, और अब आप बाहर जाके देंगे अगर मैं किसी के साथ गुस्सा हो रहा हूंगा तो आप एक भी बात को सुनेंगे नहीं, बोलेंगे इधर तो सुना के चला गया और ये देखो ये हाल है इसका, वो क्लास तो गई किनारे, वो बात याद रहेगी। इसलिए खुद पर ही अपने को नजर रखनी है, इसलिए बताया साक्षियों के देखना है, किसी के भी पाठ को देख के हमको विचलित नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहा है तो हम पूरा परिवर्तन हो गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हैं अंदर में, और हम परिवार के हैं, परिवार में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये ऐसा नहीं सोचना कि इतने वर्षों से चल रहे हैं तो जैसे दूध से धुला हुआ है, धुल गया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। जन बोला ना 900 चूहे खा के बिल्ली चली हाजिर को, हम ज्ञान में चले तो हमको घर वाले ताने ऐसे मारते थे, और सबको सुनने भी पड़ते हैं, और कई बार अभी भी बोल देते हैं। कम से कम हम कहते थे हम कम से कम चले तो हैं, आप चलो तो सही। तो जो पहले सारे एकदम विरोधी थे, एकदम पूरा एंटी थे, अब धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। इसलिए लंबे समय की साधना चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ खुद के स्तर पर करना। तो साक्षी अवस्था के आसन पर सेट होकर देखना अपने आप को भी कि मेरे में कौन कौन सी ऐसी कमी कमजोरी, और मुख्य रूप से कोई एक ही कमजोरी होती है जिस कमजोरी को हम छोड़ नहीं पा रहे, उस पर काम करना है। थोड़ी दृढ़ता चाहिए उसके लिए, अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर रहम हम कम करते हैं, दूसरों के लिए रहम के लिए संकल्प पैदा कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर ही रहम के संकल्प करते नहीं, दूसरों को रहम कर ही नहीं पाएंगे, उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अपने ऊपर रहम करना है कि कहाँ कहाँ मेरा जो समय है वेस्ट जा रहा है, जो भगवान ने मुझे इतने खजाने दिए हैं, क्या उन खजानों को मैं अपने जीवन में लाया? बांट रहा हूं तो छोड़ ही दो, कम से कम मैं अपने जीवन में लाया। जो उसने इतनी शक्तियां इतने गुण दिए हैं, क्या वो मुझे सारे याद हैं? वो मेरे कर्मेंद्र में समा गए हैं? जो उसने बोला तुमको कर्मेंद्र जीत बनना है, क्या इतने लंबे समय की साधना के बाद 10 साल 20 साल 30 साल ज्ञान में चलते हुए क्या वो कुछ मेरे में फर्क पड़ रहा है? क्या अभी भी कर्मेंद्रियां मुझे मेरे धोखा दे रही हैं? अभी भी आंखें विचलित हो रही हैं? लंबे समय की साधना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आंखों से केवल आत्माएं दिखाई देगी, वो तो दिखाई नहीं दे रही है, ये शरीर ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने लंबे समय से साधना किया, आत्म अनिश्चिति की अभ्यास किया हुआ है, तो ये शरीर हमको विचलित देखते हुए विचलित नहीं करेंगे आंखें, क्योंकि वास्तविकता हमको पता चली गई कि शरीर वास्तविक है क्या है। इसको दो चीजें से देख सकते हैं, एक है शरीर को पॉजिटिव तरीके से देखना है, एक है नेगेटिव तरीके से देखना है। अगर हम नेगेटिव तरीके से देखें तो इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? हड्डी मांस का पिंजरा है, उसके पीछे भी हमारा बार बार संकल्प जा रहे हैं। और दूसरे पॉजिटिव तरीके से देखना, बाबा कहते हैं अगर बहने तो बहने भाइयों को कैसे देखें? हनुमान जी गदा लेकर खड़े हुए हैं, अगर मैं बुरी दृष्टि देखे तो एक ही गदा पड़ेगी, और भाई बहनों को देखे तो जैसे काली तलवार लेकर खड़ी है, एकदम काली देवी दुर्गा देवी। तो ऐसे एक पॉजिटिव दृष्टि से बोई देवी जो मंदिरों में पूजा हो रही है, बोला ना संडे की मुरली में बाबा ने तीसरा अभ्यास बताया था, अपने पूज्य स्वरूप को याद करो, अपने आदि संस्कारों को इमर्ज करो। तो हम उन बातों को इमर्ज करने के बजाय दूसरी बातों को इमर्ज करते रहते हैं, ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है और अज्ञान इमर्ज हो जाता है, वो युद्ध चलता रहता अंदर अंदर ही अंदर, और इसी युद्ध में हम दुखी होते रहते, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, कभी ऊपर कभी नीचे। बाबा ने कहा निरंतर प्रगति, निरंतर पुरुषार्थ की स्पीड हमारी बढ़ती रहनी चाहिए। तो साक्षी स्थिति के ओर इस पर स्थित रहना। नेक्स्ट है बेहद का वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं है, और वैराग्य आएगा कैसे? कहने से नहीं आएगा, कुछ ठोस अपने नियम बनाने पड़ेंगे। जो भी सोशल मीडिया है वर्तमान में, तो मुख्य एक ही अगर देखा जाए तो सारा घूम फिर के सोशल मीडिया हमारी मुट्ठी में है, जो ही हमारे वैराग्य को खत्म कर रहा है, वो ही हमारे वैराग्य को जला रहा है, और वो सबके पास है। असली साधना तो वो है मोबाइल, बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे की देखरेख कैसे करते हैं, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ऐसे मोबाइल को भी हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के रखते हैं। मोबाइल गिर जाए तो कितना हार्ट होता है एकदम, बच्चा गिर जाए तो उसको कोई बात नहीं, मोबाइल गिर जाए तब तक छोड़ेगी नहीं उसको, एक घंटा तक उसके बारे में चिंतन चलता रहेगा। और अगर कोई भाई बहन गिर गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उसको हल्का कर देंगे, और मोबाइल के प्रति योग में भी मोबाइल ही दिखेगा उससे कितना प्यार हो गया है। तो हमारी बुद्धि जानी जा कहां चाहिए और जा कहां रही है। तो वैराग्य भी चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें निकाल सकते हैं। पास भी दोनों रहना है, तो पास बाबा के पास रहना है, पास अर्थात वे अनेक प्रकार के योग के हमको अनुभव करने हैं, बीती बातों को छोड़ देना है, जो भी हमारे जीवन में कुछ भी हुआ, कल जो भी हुआ ना वो भी भूल जाना है, अब ये क्लास कराए ना इसको भी भूल जाना है, नई चीज याद करनी है अभी, ठीक है? तो हम पास रहेंगे। ओम शांति।